जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा। जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। नितई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल की अगर कथा आगे बढ़ाते हुए जय गोवर्धन धाम जय जय श्री राधे। जय गोवर्धन धाम जय जय श्री राधे। जय गोवर्धन धाम जय जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। गोवर्धन धाम की जय हो। एक बार सती अनसुया की परीक्षा लेने की देवताओं ने सोची। ब्रह्मा विष्णु महेश ये अपने पत्नियों से चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ी सती कौन है पतिव्रता। तो उनके पत्नियों को लग रहा था कि हम ही में से कोई होगा, लेकिन फिर तीनों देवताओं ने कहा कि नहीं, पृथ्वी पर है, देवता लोक में नहीं कोई। तो वो कौन है? तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया। तो एक दृष्टि से सोचा जाए तो तीनी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियों को लगा कि अरे हमसे बढ़कर पतिव्रता कौन हो सकता है। ये एक दृष्टि है। लेकिन दूसरी दृष्टि यह है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों पत्नियों ने सोचा कि अनसुया का गौरव प्रकट होना चाहिए, है ना, प्रकाशित होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपने पतियों के सामने प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा कि उसका टेस्ट किया जाए। टेस्ट करने से क्या होता है? आप सोना टेस्ट करते हो ना, सोना, सोने का जो स्वर्णपन है ना, सोना होने का जो अस्तित्व है वो प्रकाशित होता है। जितना सोने को आप टेस्ट करोगे उतना वो चमकता है। तो अच्छा है कि बुरा है? हाँ, जब सोने की परीक्षा होती है तो सोने का तेज और बढ़ते जाता है। और सोने की परीक्षा कब कैसे होती है पता है आपको? अग्नि से होती है। तो जब सोना जलता है ना खुद, तब उसका गौरव प्रकाशित होता है। आपके पास ऑरेंज कभी देखा, ऑरेंज आपने, उसका रस कभी निकलता है? दबाने से निकलता है ना। जब दबाने का कष्ट सहता है ना वो, तब उसका मीठा मीठा जूस बाहर निकलता है, नहीं तो वो पता चलता नहीं क्या ऑरेंज के अंदर क्या है। जब वो स्वयं दबने का कष्ट सहता है, तब लोगों को मीठा रस पीने को मिलता है। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए पत्थर को अगर मूर्ति बनाना है तो क्या होता है, बहुत नीलिंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, बहुत सारा हथौड़ा और कीले का मार खाना पड़ता है। हमारे मराठी में कहावत है, टाकी से घाव सुसल्या शिवाय देव पण येत नाही। मतलब वो जो टाकी, मतलब वो नेल होता है ना, पत्थर, उसको मार मार के मार मार के मार मार के कई महीने कई साल हो सकता है कभी कभी, तब जाकर वो पत्थर नहीं रहता है, फिर वो मूर्ति हो जाती है, फिर लोग उसकी पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, भगवान को बुलाते हैं, और बाद में फिर कभी ठोकते नहीं हथौड़ी से, केवल पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती माला पहनाते हैं। तो जब पत्थर कठिनाइयों को सामना करता है, कसौटियों का, तो एक दिन वो भगवान बन जाता है मूर्ति के रूप में। उसी तरह से तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश के पत्नियों ने सोचा कि इसकी कसौटी की जाएगी तो इसका यश, इसकी कीर्ति जो है ना, वो प्रकट हो जाएगी। तो फिर वो, उन्होंने कहा कि जाओ आप उसकी परीक्षा करो, वेट करते हैं। तो फिर वो तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, वो अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं साधु बनकर, और साधु बनकर बोलते हैं कि भवती भिक्षाम देही, भोजन खिलाओ। तो वो कुछ देर आती नहीं है, वो बुलाते रहते हैं लेकिन वो आती नहीं है, कुछ देर बाद में आती है। तो पूछते हैं देर से क्यों आए आप, कहते हैं पति की सेवा में थे। ठीक है कोई बात नहीं, हमें भोजन खिला दो। ठीक है आइए बैठिए। तो कहते हमारी एक शर्त है कि आप बिना वस्त्र पहने आपको भोजन खिलाना है। तो वो तो पतिव्रत नारी है, उसको समझ में आता है कि इसमें कुछ है। तो कोई बात नहीं, ठीक है जैसे आपकी इच्छा हो पूरी की जाएगी। अंदर जाती है, अपने पति का कमंडल लेके आती है, और कमंडल में क्या है, सवेरे जब हम लोग ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं ना, तो पहले हम लोग जल में मंत्र कहकर सब नदियों का आह्वान करते हैं, फिर वो जल हमारी पूजा के लिए योग्य हो जाता है, फिर उसके बाद में हम आचमन करते हैं, फिर उसके बाद में हम सारी पूजा जितना भी है वो सब उससे करते हैं, फिर उससे अभिषेक होता है, बहुत सारा चीज़ उससे होती है, फिर जो बचता है ना जल, उसको कमंडल में रखते हैं और दिन भर सबको तीर्थ के रूप में देते हैं, अभिमंत्रित जल होता है वो। और हमारा तो भी क्या कहें, लेकिन अत्रि मुनि का अभिमंत्रित जल जो है ना, वो उसमें कितनी शक्ति है, उसको पता है कि अपने पति के अभिमंत्रित कमंडल के जल में कितनी शक्ति है, तो वो ले आती है, जल लेती है और तीनों पे छिड़कती है। तीनों पे छिड़कने के पश्चात तीनों एकदम छोटे से नग्न बालक हो जाते हैं, छोटे से इसे रेंगने वाले। अभी नग्न बालक छोटे से जब होते हैं तो कुछ संकोच होता है क्या आपको उनके सामने? वो तो बालक हमारे माता के साथ बाथरूम में घुस जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है। माता को कुछ करना है, प्रतर विधि करनी है, स्नान करना है, फिर भी बच्चा बाथरूम में साथ में रहता है उनके, तो संकोच होता है, बालक के साथ कुछ नहीं होता है। तो फिर वो उनको निर्वस्त्र भोजन कराती है। तो वो कार्य में जो भी होता है उसमें, वो जो बालक बने हुए तीन देवता है ना, वो सब एकदम अटैच हो जाते हैं उनसे, माता के रूप में, माता ही होगी ना, अभी वो छोटे से बालक को खिला रही है उनको। तो वो बैठकर भोजन करने के बजाय वो उनको खिलाती है भोजन तीनों को, तो तीनों वहीं रह जाते हैं। अभी एग्जाम कितने दिन चलती है? 7 दिन चलेगी मैक्सिमम। अभी एग्जाम होने के बाद में भी कई दिन गए तो वापस लौट के नहीं आए एग्जामिनर्स, तो उनकी पत्नियां जो है वो व्याकुल हो गई, क्या हो गया? तो वो खुद आती है, उनको पता है ना कहाँ गए, तो खुद ही आती है वो फिर अन्नसुईया को पूछती है कि हमारे पति कहाँ हैं? वो कहते हैं वो खेल रहे हैं। छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं उधर, कहते हैं हमारे पति हैं, प्लीज वापस कर दो, ऐसे कैसे हो गया? तो फिर वो उस दिन का कमंडल लेके आती है, फिर जल छिड़कती है, तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन हमारी ऐसी शुभकामना इच्छा है कि आप हमारी माता बनो और हम आपके पुत्र बने। तो कहते ठीक है। तो फिर ब्रह्मा जी के तरफ से चंद्र देवता उनके बालक बनते हैं, ब्रह्मा का अंश विष्णु दत्त भगवान बन जाते हैं, दत्तात्रेय, और शंकर जी दुर्वासा के रूप में उनका जन्म लेते हैं। तो तीनों जन्म लेते हैं, लेकिन ये तीन रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन अनुसुईया कहते हैं कि देखो अच्छा है, आप मेरे बालक बनेंगे, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आपने मेरा कसौटी लेने का प्रयास किया ना, मैं आपको शाप दूंगी कि आप तीनों पत्थर बन जाओ। तो फिर ब्रह्मा जी ब्रह्माचल बने बरसाने में, शिव जी नंदीश्वर बने नंदगांव में, और विष्णु जी गोवर्धन बने। और किसी एक समय, अभी उसका पता नहीं है, किसी एक समय प्रभु रामचंद्र का जब अवतार हुआ था तो प्रभु रामचंद्र ने इन तीनों पर्वतों को स्थापन किया अपनी अपनी जगह पर। कोई चाहिए ना निमित्त? ब्रह्मा ने तपस्या तो किया था अलग से पत्थर बनने के लिए, लेकिन उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए ना कोई। तो वो इस तरह से वो ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत बने, वो भी ब्रज में बने। तो ब्रज में तो महान, जो इस ब्रह्मांड में सबसे महान ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, त्रिदेव कहते हैं उनको, ट्रिनिटी, उनके ऊपर इस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण ही है और कोई नहीं, हाईएस्ट अथॉरिटी है इस ब्रह्मांड के। तो वो ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे अधिकारी जो हैं वो यहां पर पत्थर बन के बैठे हुए हैं। आप सोच सकते हैं पत्थर बनने का मतलब क्या होता है? पत्थर बनना मतलब लोग आप पे चढ़ेंगे, उनके पैर लेकर चढ़ेंगे और सब कुछ करेंगे, नंबर वन नंबर टू जो भी है थूकेंगे, कुछ पक्षी भी उसमें करेंगे विष्टा, एवरीथिंग हैपेंस ना ऑन माउंटेन। तो वो ऐसा नहीं कि संती लोग आएंगे, बाकी सबको एंट्री नहीं है हमारे ऊपर। अभी हम जाते कि नहीं ऊपर? सब जाते ना, नंदीश्वर में चढ़ते हैं, ब्रह्मा चल में चढ़ते हैं, खाली गोवर्धन में भक्तों को वैष्णवों को चढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो चढ़ते हैं ना। इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, रोज जब जाते हो ना आप प्रणाम करके जाना है, नंबर वन। ऊपर कोई भी भोग का काम नहीं करना है, कोई कचौड़ी खा रहा है कोई, वो सब कुछ नहीं करना है। ऊपर जाना है केवल राधा रानी के दर्शन करने के लिए, या तो सेवा करने के लिए, या तो और कुछ भगवान के विषय में सेवा करने के लिए जाना है ऊपर। कोई भी भोग वस्तु का लाभ लेने के लिए ऊपर जाना नहीं है, ओनली सर्विस, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये बहुत विशेष बात है समझने की, क्योंकि हम लोग उतने लायक नहीं है कि ब्रह्मा जी के सर पे पांव रख के घूमे ऊपर और आनंद ले लें। लेकिन जा रहे हैं ये प्रार्थना करके कि श्री जी को देखने जा रहे हैं बस, दिस शुड बी आवर कॉन्शियसनेस। तो उस पर्वत को भगवान ने उठाया, उसकी कहानी मैंने बताई क्या आपको, हनुमान जी की? नहीं बताया ना। तो वो उनका तो जन्म हुआ था हिमालय की गोद में, द्रोणाचल पर्वत के माध्यम से, द्रोणाचल पर्वत उनके पिता थे। तो भगवान ने जब भी ऐलान किया कि हम जाएंगे अवतार लेंगे, तो राधा रानी ने कहा था कि हम नहीं आएंगे, क्योंकि वो बिना यमुना के हम गोवर्धन के रहते नहीं हैं। उन्होंने तो कहा कि पहले ही पृथ्वी पर 84 कोस गोलोक वृंदावन का हिस्सा यमुना जी पूरी और गोवर्धन पूरा ये भेज रहे हैं, भेज दिया हमने। तो गोलोक धाम से ये गोवर्धन जी पृथ्वी पर आ गए, और प्रकट कैसे हुए? गोलोक वृंदावन में राधा और कृष्ण एक दिन बैठे थे सब निर्माण होने के बाद में। तो राधा रानी ने ऐसी इच्छा प्रकट की कि हमारी लीलाओं के लिए ना एक अति उत्कट और गुप्त और बहुत सुंदर जगह होनी चाहिए, हम दोनों के सुंदर लीलाओं के लिए, माधुर्य लीलाओं के लिए। तो ऐसे राधा रानी ने कहा, उसी समय कृष्ण की वक्षस्थल से एक तेज निकला, बहुत भव्य दिव्य तेज, और जाके जाके जमीन पर गोलोक वृंदावन के सेटल हो गया, और सबके आंखों के सामने वैसे बढ़ने लगा पर्वत के रूप में। तो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, करोड़ों योजन आकाश में बढ़ते गया, एक योजन 8 मील का होता है, करोड़ों योजन वो पर्वत जो है ना वो ऐसे बढ़ते 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 गया। तो कृष्ण को रोकना पड़ा उसको एक जगह पे, बस अभी और मत बढ़ना, वो गोवर्धन पर्वत है, कृष्ण भगवान के हृदय का सार है वो। जो गौलोक में प्रकट हुआ। फिर जब उनको पृथ्वी पर आने का समय हुआ तो वो द्रोण के पुत्र बनकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। फिर काशी से पुलत्स्य मुनि आए घूमते घूमते कि हमारे काशी में पर्वत नहीं है, और पर्वत जो है ना वो भजन करने के लिए बहुत अनुकूल होता है। आप लोगों को बताया क्या कितनी जगह पर भजन अनुकूल होता है? नहीं मालूम है आपको? मालूम है फिर भी आप मंडी ला रहे हो। कौन सी जगह आपको लगता है कि जप करने के लिए बढ़िया होती है? भक्तों का संग, पता है ना आपको? ना यू नो इट बट यू से टिल से डोंट नो, क्योंकि आप सोचना नहीं चाहते, आपको रेडीमेड आंसर चाहिए है ना, स्पून फीडिंग चाहिए आपको। तो और बताइए कौन सी जगह अच्छी है जप करने के लिए? बोली बोली बोलो। हाँ मंदिर, अभी भगवान के सामने बैठे हम, यहां वहां देखो आपको आंसर मिल जाएगा। एक भगवान के मंदिर, मंदिर में, एक भक्तों के संग में, और नदी का किनारा, और गौशाला, भगवान के गाय का संग, अच्छी बात है बहुत। और हाँ तुलसी महारानी के सामने, कैसे भूल सकते हैं आप ये। और पर्वत पर, और वन में, फॉरेस्ट में, और उपवन में भी, बगीचे में भी, और कहाँ? अभी आप कहाँ बैठे हो? धाम है कि नहीं? हाँ धाम भी भगवान भजन के लिए अनुकूल है। और प्रतिकूल कौन से हैं भजन के लिए जगह? अनफेवरेबल, शहर, रजोगुण का प्रभाव होता है वहाँ पर। फिर तमोगुण की जगहें, जहाँ पर शराब, अड्डा, व्यभिचार, जुआ, मांसाहार, खून खराबा, झूठ बोलना, जुआ, ये सब होता है। तो पर्वत एक जप करने के लिए बहुत सुंदर जगह है। पर्वत के ऊपर साधु लोग जाते हैं ना, हिमालय में क्यों जाते हैं? क्योंकि पर्वत बहुत अनुकूल है, पर्वत जब जाते ही अपने आप ही जप का मन बनता है। जैसे मैं उत्तरकाशी में था तो मुझे ऐसा दिव्य अनुभव हुआ कि आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, नींद आने से नहीं, फुल जागृति में, लेकिन अंदर जाने का ही, अपने आप अंदर यात्रा करने का भाव बनता है उधर। ऐसा हिमालय का एक माहौल है, वातावरण है। हिमालय में बैठते ही आपको ऐसा लगेगा कि भजन किया जाए, ऐसा लगेगा। एज सुन एज यू गो देयर यू फील लाइक चैंटिंग द होली नेम, और मेडिटेट, और सिट क्वाइटली एंड गो विद इन। ये अद्भुत अनुभव हुआ। और जब चाहे तभी आंखें बंद होकर अंतर्मुख हो जाता है आदमी वहां पर, वातावरण ऐसा है ऑटोमेटिक। और शहर में कैसा वातावरण है? आप आंख खोल के सब जगह देखते रहोगे, क्या चल रहा है इधर, क्या चल रहा है उधर, क्या चल रहा है, एवरीथिंग इज लाइक एक्सटर्नल। और हिमालय में एवरीथिंग इज इंटरनल, टू गो विद इन, जर्नी विद इन। तो काशी में पर्वत नहीं है, काशी फ्लैट जगह है, तो वो हिमालय में ढूंढे ढूंढे गए थे कि कोई पर्वत में ले जाऊं यहां से, मुमकिन है क्या? ऐसे हम जाते उत्तरकाशी तो पर्वत उठा के घर पे लेके आएंगे क्या इसमें? लेकिन ऋषि मुनि, सिद्ध मुनि ये कर सकते हैं। तो पुलिस सब ने देख रहे थे, उनको गोवर्धन अच्छा लगा बहुत, ये एकदम सब कुछ है उसके अंदर, क्या जीवन के लिए चाहिए, जीविका चलाने के लिए, भोग के लिए नहीं, जीविका चलाने के लिए, जड़ी बूटी, खंदर, बैठने की जगह, गुफाएं, एकांत, पब्लिक, झरने, एवरीथिंग इज देयर। तो वो गोवर्धन के पिताजी वो जाते हैं द्रोणगिरी के पास और कहते हैं कि हमें गोवर्धन हमारे साथ ले जाना है। तो पिताजी को पहले बहुत दुख होता है कि मेरा प्रिय पुत्र अभी जाएगा, लेकिन संतों की इच्छा के सामने क्या कर सकते हैं। और गोवर्धन भी इंतजार कर रहे हैं कि मुझे यहाँ से ब्रज में जाना है, कोई मौका तो चाहिए ना उसके लिए बहाना। तुरंत वो संत के पीछे खड़े हो जाते हैं, हाँ मैं रेडी हूँ। तो फिर वो संत कहते हैं कि चलो मैं आपको काशी ले जाता हूँ। तो कहते हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त है मेरी, कहीं बीच में आप रखेंगे ना मुझे तो मैं वहीं बस जाऊँगा, बाद में मुझे बोलना नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि मुझे सभी वेगों पर नियंत्रण है, लघु शंका, दीर्घ शंका, निद्रा, भूख, प्यास, सभी पे मेरा नियंत्रण है, तो मुझे ये बाधा होगी ही नहीं किधर, तो मैं रखूंगा क्यों आपको, ठीक है चलते हैं। तो अभी हिमालय से जो काशी का रास्ता है ना, वो ब्रज से ही गुजरता है। देखो आप मैप निकाल के देखो, दिशा देखो कैसी है। तो जब ये ब्रज में से गुजरते हैं ना, तो गोवर्धन तो भक्त है ना भगवान के, वो तो सिद्ध योगी पुरुष नहीं है, मुनि वगैरह नहीं है वो, तो भक्त हैं भगवान के, तो उनकी भक्ति जो है ना वो इतनी ऐसे व्याकुल होती है। हाँ भक्ति क्या बोलते हैं मराठी में, उत्तम बड़ो नहीं थे, मतलब ऐसा भक्ति इतनी बढ़ जाती है हृदय में, तो व्याकुल हो जाते कि मेरा धाम आ गया भगवान का, इधर ही मुझे सेवा करना है भगवान का। तो वो भक्ति के, उनके भक्ति के प्रभाव से जिनको सारे वेगों पर नियंत्रण है, वो पुलत्स्य मुनि को लघु शंका का वेग आता है, इतना वेग आता है कि उनको कुछ समझता ही नहीं है पूरा। देखो आप कितना भी बुद्धिमान होंगे ना, आप जब आपको वेग आता है ना कोई, तो आप काम नहीं कर सकते, बहुत नींद आ रही है आपको या बहुत लघु शंका होने का, बहुत भूख लग रही है, तो आपका दिमाग नहीं चलता है उस समय, तो पूरा सिद्धि विद्धि वाला दिमाग बेकार हो जाता है। तो कुछ सोचने के पहले ही पर्वत को रखते हैं और भागते हैं जंगल में, और फिर विश्रांत होके आते हैं, फिर अपना दोबारा कोशिश करते हैं, तो वो उठता नहीं है, पूरा बल लगाते हैं, फिर शरीर का बल खत्म, तो मंत्र बल लगाते हैं, सिद्धि बल लगाते हैं, तपो बल लगाते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर कहते हैं क्यों उठने रहे हो, मैंने कहा मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा था आपको कि आप रखेंगे तो मैं उठूंगा नहीं। भाई जिस पर्वत को इतने आराम से उन्होंने उठाया था, ऐसे गेंद की तरह बच्चा कैसे खेलता है ना, वैसे लेके आए थे वो उसको, वही है भक्ति, वो वही गोवर्धन है और वही पुलत्स्य मुनि है, लेकिन अभी नहीं उठा पा रहे उसको। क्या मतलब उसका हुआ, ये तपोबल सिद्धि बल है ना, ये सब कुछ काम का नहीं होता है, सर्वश्रेष्ठ बल भक्ति का होता है। गोवर्धन के भक्ति के बल के सामने पुलत्स्य मुनि का तपोबल सिद्धि बल सब फेल हो गया, और फिर को क्रोध आया, अरे जिसको मैं ऐसा गेंद की तरह उठा के लेके आया था वो हिल नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा है, मेरा पूरा तपोबल वेस्ट हो गया। तो वो क्रोध करते हैं, शाप देते हैं कि तू नहीं हिलेगा तो मैं आपको श्राप देता हूं कि एक तिल के आकार से आप रोज धस जाओगे जमीन के अंदर। बोला मंजूर है हमें, कोई भी श्राप मंजूर है, लेकिन हम नहीं रहेंगे। मतलब क्या, भगवान के लिए कुछ भी। तो वो सत्ययुग में उनको श्राप मिला, वो वहीं पर पड़े रहे और रोज सत्ययुग से एक एक तिल का आकार के जमीन के अंदर जा रहे हैं। ये भक्ति है कि भक्ति किसी भी कीमत पर करनी है, श्राप मिले, वरदान मिले, आशीर्वाद मिले, कुछ भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वॉट एवर हैपन्स कीप डिवोटिंग टू द लॉर्ड। सत्ययुग से वेट कर रहे हैं, फिर द्वापर त्रेता युग आता है, उसके बाद में प्रभु रामचंद्र आते हैं। सत्ययुग के साल कितने होते हैं, 17,28,000, नहीं 17,28,000, इज दैट राइट, 1,728,000, वो खत्म हो जाते हैं। फिर त्रेता के कितने साल होते हैं, सब पता होना चाहिए आपको, 12,96,000। और द्वापर के कितने साल होते हैं, 8,64,000। और कलयुग के कितने होते हैं, 4,32,000। अभी मुझे कैसे याद है ये बताओ, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एकदम सिंपल, कोई जादू, कोई टोना, कोई सिद्धि विद्धि कुछ नहीं है, कलयुग के याद रखना है आपको खाली, बस सिंपल 432,000, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो द्वापर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो त्रेता, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो सत्य, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चारों का गिनती आएगा। समझ में आपको है, अभी आगे कभी बोलना नहीं कि मुझे मालूम नहीं, सिंपल एकदम, बहुत सिंपल, सब चीज़ को रटने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा बुद्धि भी इस्तेमाल करेंगे बीच बीच में तो भी काम हो जाता है। तो 17,28,000 साल गए, फिर वो आया त्रेता युग वाला, उसमें भी एंड में प्रभु रामचंद्र आए, कुछ लाख साल थे। तो जब ही सीता का हरण हुआ और सब कुछ हो गया ना, फिर वो सेतुबंध का समय आया कि भाई अभी समुद्र के ऊपर पुल बांधना पड़ेगा, और वो सब नाम लेके लिखा ना, राम का नाम तो तैरने लगे और ब्रिज बनने लगा। तो अभी कैसा है ना, वो आराम से ऐसा, वो इंडियन गवर्नमेंट का पुल बनने का काम नहीं है वो, सीता ने वहाँ पर मैंडेट दे कर रखा था कि इतने समय में नहीं बनाएंगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, अभी ज़्यादा समय नहीं है, अभी इतने समय पे आप नहीं आओगे मुझे बचाने के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी आपको। तो सब लोग ऐसे खाई में एकदम जल्दी में हैं, तो वो हनुमान जी सब जगह उड़ रहे हैं, देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा पर्वत लाया जाए और उसको तैराया जाए, ख़त्म किया जाए इसको काम। तो 7 कोस की जगह बची है सात कोस वाला पर्वत चाहिए। सात कोस मतलब कितना होता है? एक कोस कितने का होता है? हाँ, 2 मील का होता है एक कोस। एक मील कितने का होता है? 2.4 कुछ किलोमीटर का होता है, इस रफली। तो इतना बड़ा वा पर्वत चाहिए, तो सब जगह ढूंढ रहे हैं आकाश में उड़ते हुए, तो उनको गोवर्धन दिखाई पड़ता है। बोले ये एक पर्वत उठाएंगे ना तो झट से काम हो जाएगा, बार बार उठाना रखना समय बर्बाद नहीं होगा। तो नीचे उतरे और हमेशा के, तो वो भी इतने बलवान है ना हनुमान जी, इतने बलवान हैं, ऐसे पर्वत को ऐसे ऐसे उठाते हैं ऐसे पर्वत को। तो फिर उन्होंने ऐसे ही कोशिश किया उठाने का, तो हिले नहीं। फिर दोनों हाथ से कोशिश किया, फिर पूरा बल लगाया, तो लगा कोई विशेष पर्वत है, तो देखते हैं जरा कहाँ तक फैला हुआ है, तो उतना ताकत लगाएंगे। तो एक दिशा में ऐसे उड़ने लगे, तो गोवर्धन जी उधर से बढ़ने लगे, तो एंड तक नहीं मिला उनको। एंड तक गोवर्धन का एंड किधर है समझ में नहीं आया, तो इस दिशा में गए तो वहां से बढ़ने लगे, तो उधर का एंड में समझ में नहीं आया। तब समझ में आया कि कोई दिव्य वस्तु है ये, दिव्य जीव है कोई। तो दंडवत प्रणाम साक्षात किया, तो महाराज जी आप कौन हो, आपका परिचय दो। तो कहते मैं गोवर्धन हूँ, द्रोण पुत्र, आप मुझे क्यों उठा रहे हो, आपका परिचय दो पहले। तो संक्षेप में, लंबा तो ऐसे कथा का मंडप नहीं था उधर की, भाई पूरी रामायण सुना दे उनको, संक्षेप में सुना दिया फटाफट। तो कह रहे पहले बोलते तो अब तक मैं कभी का पहुंच चुका होता वहां पर, तो ना वो इतने भारी पर्वत जो हनुमान से भी नहीं उठ पाए, सोचो आप जरा। हनुमान भी कोई कमजोर भक्त नहीं है, हमारा तो दासरस के शिरोमणि है, और बल में तो वायुपुत्र बलवान है सबसे, उनके बल की तो पूरी आख्यायिका कितनी बड़ी है। फिर भी वो गोवर्धन को उठा नहीं पाए, और जब गोवर्धन की इच्छा हुई तो गोवर्धन ना रुई के समान हल्के हो गए, लाइक अ कॉटन, झट से उठ गए। हनुमान जी को उठ गए आकाश में और जाने लगे लंका की ओर, उधर सेतुबंध की ओर। तो आकाशवाणी हुई कि सेतुबंध पूरा हो गया है, अभी कोई पर्वत की जरूरत नहीं है। तो वापस रखते उनको आके, जैसे ही वापस रखते ना, गोवर्धन इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। आप सोच सकते हैं कोई व्यक्ति 17,28,000 साल और इसमें से कुछ लाखों साल वेट कर रहे हैं, 20 साल तो कम से कम किया वेट, 20 लाख साल कोई क्या साधारण चीज़ है क्या? इतना इंतजार करना कोई, आप करेंगे इंतजार? छोड़ देंगे इंतजार करना भाई, चलो कुछ करो दूसरा काम, क्या करना है, कुछ लाभ तो है ही नहीं इंतजार करके। लेकिन कितना संयम है और कितनी इच्छा है और कितना निश्चय है वेट करने का, कितना प्रयास है इसमें, मन की कितनी तैयारी है उसके अंदर, कितना प्रेम होगा भगवान के ऊपर, सोचो आप। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको याद आ रहा एग्जाम्पल, वो आर्मी का कोई आदमी मर गया युद्ध में, ठीक है, तो वो पत्नी, वो पति का शव मिला ही नहीं, बहुत सारा इंतजार किया उसने। फिर ना उसने वो पति का जो दूसरा भाई था, जो उनकी वजह से रक्षा कर रहा था पति के जाने के बाद, उससे विवाह कर लिया। उसके बाद 45 ईयर्स विवाह के हो गए, दूसरे विवाह के, और पता चला कि वो पति जीवित है पाकिस्तान के जेल में। तो पत्नी ने इंतजार किया क्या? नहीं किया ना इंतजार। तो हमारा जीवन ऐसा होता है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, प्रैक्टिकलिटी भी है, लेकिन कह रहा हूं मैं कि एक गोवर्धन को देखो कितने लाखों साल वेट कर रहे हैं भगवान के लिए। तो यहां का सब कुछ ऐसे ही होता है। तो फिर गोवर्धन जी बहुत रोए, हनुमान जी भी दंग रह गए, अरे क्या भक्त है ये, किस तरह से रो रहे हैं, क्या भावना है भक्ति की इनकी। हनुमान जैसे महान भक्त भी उनकी भक्ति का प्रदर्शन देख के प्रभावित हो गए, इंप्रेस्ड फुल्ली। और प्रभु रामचंद्र को ना ऐसे गदगद होकर सब कहानी बताई कि ऐसे में आपको एक आपके भक्त को मिला। तो भगवान ने कहा, प्रभु रामचंद्र ने कहा, हाँ मेरा भक्त है, वो इंतजार कर रहा है मेरा। तो ये सब होने के बाद आके उनको मैसेज देना कि अभी अगला अवतार जब होगा ना मेरा, तो आपके ही आसपास मैं आपकी मेरी सारी अंतरंग लीलाएं करूँगा, जो मेरी प्राइवेट और उत्कट लीलाएं जो हैं वो आपके अंदर आपके आसपास करूँगा। इसलिए प्रभु ने जब अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में, तो गोवर्धन के ऊपर तो कितनी सारी लीला की। आप गोवर्धन परिक्रमा करेंगे ना, तो अगर सारी कथा आपको सुननी है ना, तो 4 दिन आपको परिक्रमा करते करनी पड़ेगी। हाँ, इतने सारे स्थान हैं और उतने तो अभी प्रकट स्थान हैं, इतने लुप्त हो गए तो उसको क्या कहने हैं उसके बारे में, जो दिख रहे हैं अभी आज आपके तारीख में, वो उतने इतने स्थान हैं, वो पूरी कितनी कथाएं हैं, बाप रे, एक एक जगह की कितनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। भगवान ने एक कथा गोवर्धन की खुद की है कि गोवर्धन उठाया भगवान ने, वो गोवर्धन की अपनी निजी कथा है, लेकिन गोवर्धन के आसपास क्या क्या हुआ उसके लिए तो कितनी कथाएं। तो कल हमने तो गोवर्धन का ये इतिहास हुआ कि गोवर्धन कैसे वहां पर वेट कर रहे हैं। तो फिर आखिर में भगवान आए, अवतार लिया, लीला किया, फिर गोवर्धन को उठाया उन्होंने। अच्छा, तो प्रभु रामचंद्र ने एक उनको बताया कि आपके इर्द गिर्द लीला करेंगे, लेकिन एक और काम करेंगे, 7 दिन 7 रात आपको सर पे उठा के रखेंगे छत्र की तरह। मतलब भगवान ने गोवर्धन की इस बात तीव्र भावना को ना ऐसा प्रतिसाद दिया है कि न केवल उनके ऊपर लीला किया है, अपने चरणों के रज दिया है, लेकिन अपने सर पे भी धारण किया, अपने ऊपर धारण किया उनको खुद उठाकर 7 दिन और 7 रात। तो 7 कोस का पर्वत और 7 दिन 7 रात अपने सर पे उठा के रखा उनको। तो फिर जब उठाया 7 दिन, तो इंद्र को एक दिन समझ में आया, क्योंकि उनका संवर्तक बादल का जो जल था ना वो सब समाप्त हो गया। संवर्तक बादल के पास में इतना जल होता है, आपको पता है, संवर्तक बादल जब जल बरसाते हैं ना, एक होता है मिनी प्रलय, एक होता है महाप्रलय। हाँ, महाप्रलय मतलब क्या कि महाविष्णु के शरीर से जो ब्रह्मांड निकले ना वो वापस चले जाते हैं उनके शरीर में, मतलब वो ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है, ब्रह्मांड रहता ही नहीं। ब्रह्मांड कैसे, बीज रूप में ना, बीज रूप में छिद्र में से निकलता है, सीड फॉर्म, फिर विकास होता है उसका, फिर विकास होने के बाद में 14 भुवन तैयार होते हैं, फिर 14 भुवन में ग्रह उपग्रह तैयार होते हैं, फिर वो फंक्शनल होता है, उसके अंदर फिर जीव सृष्टि का निर्माण होता है। जब निर्माण होता है ना तो महाविष्णु उसमें दृष्टिपात करते हैं, नजर डालते हैं उसके, दृष्टि, उनके दृष्टि से 3 गुण कार्यान्वित होते हैं, एक्टिवेट, और 3 गुणों के कारण होने से जीव सृष्टि का निर्माण होता है। ब्रह्मा की तरफ से रजोगुण का निर्माण होता है, उसमें सृष्टि का निर्माण होता है, फिर उसमें फिर जितना भी समय उस ब्रह्मांड का है, ब्रह्मा जी का जीवन है, वो सब चलते रहते हैं। फिर जब समाप्त समय होता है पूरा, ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, उस समय वो पूरे ब्रह्मांड जो है वो वापस महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। जब वो सांस लेते हैं सब उसमें प्रवेश करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो सब निकलते हैं बाहर, वो महाप्रलय है, ब्रह्मांड का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। एक होता है मिनी प्रलय, एक 4 युग होते हैं ना पूरे, टोटल साल कितने होते हैं उसके,
17 लाख।
अभी आपको बताया ना, 10 से मल्टीप्लाई करो कलयुग के, सिंपल। अभी कितने आप इतने जल्दी भूल जाते हो, कलयुग तो इतना आगे बढ़ रहा है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। 4,32,000 को जब 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो चारों युगों का पूरा समय आ जाएगा उसके अंदर, 4 गुना 3 गुना 2 गुना और 1 गुना, कितने हो गए, 10 हो गए ना, तो 43,20,000 ईयर्स। ये जब होता है ना, 4 युग समाप्त होते हैं ना, तो एक मिनी प्रलय होता है। वो किससे भी हो सकता है, वो सूर्य के प्रकाश से हो सकता है, अग्नि से हो सकता है, वायु से हो सकता है, किससे भी हो सकता है। एक तत्व अगर ज्यादा विकसित कर दिया भगवान ने उसके लिए, तो भी सूर्य 12 सूर्य आगे समझो एक साथ, तो पूरा जलकर भस्म हो जाएगा कंप्लीटली। और इंद्र की तरफ से काम है इस समय, उसका ड्यूटी है, तो वो संवर्तक बादलों को भेजेगा, और उस समय ऐसा लिखा है कि 1,000 किलोमीटर तक पृथ्वी पर पानी जमा होता है, चारों तरफ पृथ्वी इतनी होगी तो ऐसे हो जाएगी, और ऊपर सब पानी हो जाएगा। फिर वो ब्रह्मा की एक रात तक, ये जो है ना 43,20,000 ईयर्स, ये ब्रह्मा का 12 घंटा है, 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा, दिन का समय है केवल। तो दिन के समय में तो अपना काम चल रहा है, सृष्टि का काम चल रहा है, फिर प्रलय के समय पे क्या होता है, पूरा उतना समय तक वर्षा होती रहती है। कैन यू इमेजिन दिस, 43,20,000 ईयर्स तक वर्षा ही होती रहती है, और पूरा सब जीव सृष्टि नष्ट हो जाती है, इतना जल में सब नष्ट हो जाता है। फिर कई सूर्य, मेरे ख्याल से 12 सूर्य या 100 सूर्य, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट उतने सूर्य आकर वो सारा पानी का बाष्प कर देते हैं पूरा, और फिर बैरन ब्रह्मांड, मतलब उसमें कुछ जीव नहीं है, केवल लोकेशन है, उसमें फिर सृष्टि का निर्माण करना आरंभ होता है। उसके बीच में सारे जीव जो है ना, वो जो मुक्त मुक्त नहीं हुए, वो सब महाविष्णु के शरीर में ऐसे हैंगिंग रहते हैं, सस्पेंशन। फिर उसके बाद दोबारा सृष्टि का निर्माण होता है, ब्रह्मा जी शरीर निर्माण करते हैं और फिर वो जन्म लेने आरंभ करते हैं। तो मैं ये सब क्यों बताया आपको, वो संवर्तक बादल जो पृथ्वी पर 1,000 किलोमीटर तक रेडियस, हाँ डायमीटर नहीं रेडियस, मतलब कितने हो गए टोटल डायमीटर कितना हो गया, 2,000 किलोमीटर, उतना जल इकट्ठा होता है। वो बादल भेजे इंद्र ने, वो भी ऑफ टाइम, अभी समय भी नहीं आया उसका, उसका भी मुहूर्त आया आना चाहिए ना, वो मुहूर्त नहीं आया है, बीच में भेज दिया केवल क्रोध की वजह से। आप सोचो क्रोध कितना खराब होता है। क्रोध क्यों होता है, जब मेरे मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो मुझे क्रोध आता है। जरूर नहीं कि वो भोजन नहीं मिला तो आएगा, या नहीं मेरे मन के खिलाफ कुछ भी हो गया, मेरा ऐसा मन है कि ऐसा होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो क्रोध आएगा। और क्रोध का बहाना ढूंढेगा किस पर क्रोध करना है, कौन किसके ऊपर दागना है वो मिसाइल, है ना, किसको ब्लेम करना होता है ना कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ, होता है खुद की वजह से, खुद के कर्मों की वजह से, लेकिन वो दागना है किसी के ऊपर उसको। अभी देवेंद्र इंद्र जो है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत दिव्य व्यक्ति है वो, भगवान के भक्त हैं वो, भगवान ने उनको देवताओं का राजा बना दिया है, इतना अधिकार दिया है, और भक्त है भगवान का, भगवान भी चाहते हैं उसको बहुत। लेकिन उनको भी अहंकार होता है, क्यों होता है अहंकार, क्योंकि आपके पास बहुत धन आया ना, तो आप कितने भी अच्छे होंगे ना तो धन का मद चढ़ जाएगा, कितने भी अच्छे होंगे आप, गरीब से गरीब थे एकदम, जूता पॉलिश करते थे पहले, जैसे धीरूभाई अंबानी पहले पेट्रोल पंप में वो गैस भरते थे, पेट्रोल भरते थे, वैसे थे वो पेट्रोल बॉय, उस वहां से इतने बड़े धनी आदमी बने, तो उसका गर्व होता है कि देखो मैंने अपने अकेले के बलबूते पर, अकेले के मेहनत पे, पसीना बहा के, हाँ शून्यातुन जग निर्माण के लिए, जीरो से मैंने पूरा वर्ल्ड बना दिया अपना खुद का एम्पायर। तो अच्छे से अच्छा आदमी भी ना, धन आने के बाद, ऐश्वर्य आने के बाद, मान सम्मान आने के बाद में बिगड़ जाता है। वो चीजें ही ऐसी है, छह चीजें, कौन सी है वो छह चीजें, ऐश्वर्य, सौंदर्य, कीर्ति, बल, और हाँ वैराग्य, धन, और नहीं वैराग्य और त्याग क्यों हो गया ना, ज्ञान, ज्ञान, सॉरी मेरे को लगा त्याग ऐसे सुना मैंने, तो छह चीजें हो गई ना, ये नॉलेज, वैराग्य, बल, सौंदर्य, धन, धन, यश, कीर्ति, ये छह चीजें जब भी किसी को मिलती है ना, वो अपना रंग दिखा देती है, कोई बचता नहीं। ये छह चीज जब आती है किसी के जीवन में आती है, तो गर्व और निर्माण होता ही है। और एक ही चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आचार्य बताते हैं, कि इन सबके होने के बावजूद भी जिसको गर्व नहीं होता है उसको कृष्ण कृपा, राधा कृपा मानी जाती है। जब कृष्ण की कृपा किस पर होती है, राधा रानी कृपा होती है, तो फिर इतना सब होने पर भी उसका गर्व नहीं, दयनीय बना रहता है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितने धनी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी कितना दयनीय था, चैतन्य महाप्रभु खुद कथा बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का दयनीय, सॉरी सनातन गोस्वामी का जो ह्यूमिलिटी है ना, दयनीय है ना, वो किसी कोई कोई नकल करेगा ना तो मर जाएगा वो, ऐसा चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं। दास गोस्वामी का वैराग्य और सनातन गोस्वामी का नम्रता, कोई तुलना, कोई कुछ भी उसका नकल करेगा ना, उसकी मृत्यु सर्वनाश निश्चित है, ऐसा उन्होंने बताया। इतना दयनीय था, इतना सब ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, रोत्तमदास ठाकुर, हाँ देखो राजपुत्र थे वो, कितने नम्र थे वो, लैटरिन का जगह साफ कर रहे हैं अपने गुरु जी का। एनीवे, तो इंद्र को गर्व होता है और उसकी पूजा बंद हो जाती है तो वो सहन नहीं होता है, फिर वो क्रोध आता है, क्रोध में अच्छी 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 बुद्धि भी होती है ना वो खत्म हो जाती है, इतना ज्ञान भी रहेगा, सद आचार रहेगा, सार असार बुद्धि रहेगी, सद असद विवेक बुद्धि रहेगी, सब कुछ रहेगा, तो भी क्रोध आने के बाद में सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, ऐसा आपका अकाउंट लॉक हो जाता है, उसको एनकैश नहीं कर सकते, बंद, क्रोध का ताला लग गया, सारा धन लॉक, कुछ उपयोग नहीं उसका, फिर वैसी स्थिति में वो कुछ भी कर लेता है। तो अभी उसको संवर्तक बादल को आदेश दिया उन्होंने, जाओ ब्रज को नष्ट करो, तो संवर्तक बादल में व्यक्ति है ना खुद, वो खुद कह रहे महाराज समय तो नहीं है अभी, आप ऐसे बेसमय क्यों भेज रहे हैं, आपको कुछ पूछने का काम नहीं है, तुरंत तो जाओ। तो समर्थक बादल गए, उन्होंने इतना वर्षा किया, इतना वर्षा किया, इतना वर्षा किया, टैंक खाली हो गए पूरे, कहाँ 1,000 किलोमीटर का त्रिज्या रेडियस में पानी जमा करना है और कहाँ एक बूंद भी जमीन पे गिरा नहीं, कितना फ्रस्ट्रेशन आया होगा उनको ना। कम से कम 4 फुट तो पानी आता कम से कम जमीन पे। तो कुछ अभी हम लोग है ऐसा कुछ अस्तित्व का कोई थोड़ा सा सम्मान रहता हमारा, है ना, कि भाई 1,000 किलोमीटर भूल जाओ, कम से कम 4 फुट का पानी भी जमीन पे जमा होता ना तो हमारा कमाल, कम से कम हम बोल सकते कि हम समवर्तक बादल है, वे कहीं मुंह दिखाने के नहीं रह गए। तो इधर देख रहे हैं क्या हो रहा है, देख रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, एक वेली का एक पत्ता भी जमीन पे नहीं गिरा, ना गोवर्धन के ऊपर का गिरा ना जमीन का गिरा, नॉट अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास वॉज अपरूटेड। कैसा लगा होगा समवर्तक बादलों को, हाँ जैसे आते ही धनाधन नष्ट करने चारों चालू कर देते हैं, वो कुछ भी नष्ट नहीं हो रहा है बोलो। और गोवर्धन पर्वत पे इतनी वर्षा हो रही है घनघोर, मजा आ रहा है उसको, मतलब दुख भी नहीं हो रहा है, कष्ट भी नहीं हो रहा है, मतलब कहीं कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, उल्टा जो पर्पज के लिए सब कुछ किया था उसके विपरीत, मतलब उसके विपरीत यहाँ आनंद हो रहा है, सब लोग आनंद ही ले रहे हैं, किसी को पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, सब लोग साथ में रहकर आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सब सभी रसों के भक्त एक साथ में है, तो ना आजा आनंद ले रहे हैं, क्या बताएं आपको। तो जब समर्थक बादल हार गए ना तो समझ गए इंद्र को कि अरे, तो वज्र फेंका उन्होंने, वज्र से भी कुछ नहीं हुआ, तब इंद्र को होश आया, अरे बाप रे, मेरे वज्र को, मेरे समर्थक बादल को, ये मेरी हाईएस्ट पावर है, इसको डिफीट करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है भगवान के सिवा, इसको डिफीट कोई कर सकता नहीं। तो मतलब ये बालक जो है ना, वो नटखट बालक जो बहुत बोलता है, ऐसे में बोला था उसने, बोला था ना कि ज्यादा बोलने वाला बालक है ये, बड़बड़ करने वाला, इसकी बात सुनकर ये लोग बड़े बड़े लोगों ने अपना कर्तव्य को छोड़ दिया, वो बालक बड़बड़ करने वाला जो है ना, मेरे भगवान है वो। तब उसको होश आया, तभी बादल तो और बरसाने के बरस, बादल पानी खत्म हो गया तो सब ड्राई हो गया, तो वो नीचे आ गए तुरंत पश्चाताप करते हुए, पहचान, तभी उसके होश आए, उसको होश, सारा क्रोध खत्म हो गया उसका, सत्य के भगवान का ऐश्वर्य जब भगवान ने प्रकट किया ना, कैसे ऐश्वर्य, इंद्र का सर्वोत्तम बल अपने शरीर के सबसे कमजोर भाग से परास्त कर दिया उसको, वो भी बिना प्रयास, ऐसा नहीं कि ये उंगली अभी लाल हो गई है, थोड़ी सूज गई है, इसमें भी बाम लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, उंगली वैसे के वैसी आनंद ले रही है, उंगली के स्पर्श में पूरा पर्वत टिका हुआ है, गोवर्धन को भी आनंद सब उसमें से मिल रहा था, सारा करंट जो था ना आनंद का इसमें से मिल रहा था। ये हमारे शरीर का, जिनका हाथ दाहिना हाथ चलता है ना, उनका लेफ्ट हैंड का ये उंगली सबसे कमजोर होता है, आप ये उंगली से भी कुछ उठा सकते हैं, बड़ी उंगली से थोड़ा कष्ट होता है उठाने में, सबसे कमजोर हिस्सा है, इससे भगवान ने इंद्र का सर्वोच्च बल जो है ना वो ऐसे लीलया, मतलब आसानी से परास्त कर दिया। तो इंद्र आया नीचे अपने ऐरावत पर बैठकर, और भगवान ऐसे भक्तों को देख रहे हैं, ऐसे उंगली बजा रहे हैं, सबको देख रहे हैं, तो जहां देख रहे हैं वहां से आए, उधर देख लिया, फिर उधर से उधर आया, उधर आते ही भगवान ने यहां देखा, मतलब क्या, आप अगर समझो, आपको मुझे बहुत गुस्सा है आपके ऊपर, तो जैसे मिलूंगा ना आपको डांटना शुरू कर दूंगा, फिर भी वो आप है, यू एग्जिस्ट, उसका एक सम्मान है आपका, लेकिन जब आप आते हो तो मैं आपको देखता भी नहीं हूं, आप कोशिश कर रहे हैं मुझे नजर मिलाने की, मैं देखता भी नहीं आपके, तो डांटने से भी अधिक दर्द होता है निगलेक्ट करने से। होता है कि नहीं, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, आई डोंट केयर, आई डोंट, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी, आप हो ही नहीं हमारे लिए, जिंदगी में ही अवेलेबल नहीं हो। तब इंद्र को समझ में आया कि मैंने अभी भयंकर अपराध किया है, तो भाग गया वो, सीधे अपने गुरु जी के पास में गया, बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने कहा तुम बड़े मूर्ख व्यक्ति हो, उनको अधिकार है बोलने का, तो गुरु जी है उनके, ऐसा तुमने काम किया ना, तुमको कौन बचाएगा, क्या करोगे अभी तुम, क्या बताओ तुमको उपाय, तुम मेरे को पूछने का आए हो, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, ऐसा काम किया है क्या करोगे आप, सर्वनाश निश्चित है तुम्हारा इसके अंदर, ऐसा अपराध किया तुमने। अरे भगवान जिन ब्रजवासियों के ऊपर इतना दिलो जान से प्रेम करते हैं, कुछ भी निछावर करने को तैयार है, उनको जान से मारने के, वो भी एक साथ सबको जान से मारने की, पूरे गायों के साथ पूरे ब्रज मंडल को नष्ट करने का तुमने योजना बनाया, कैसे व्यक्ति हो तुम, जो शक्ति भगवान ने तुमको दिया है वो भगवान पर प्रवेश कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो उसका, और देवेंद्र बन के घूमते हो, देवताओं का राजा बन के, ऐसा बहुत डांटा उन्होंने। बोले महाराज जो भी है किया मैंने मूर्खता, मुझे अभी उपाय बताओ। तो उपाय बताया गया कि अभी आपके लिए ना कोई उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैं कल्पना कर सकता हूं कि अगर आप किसी भगवान के भक्त को जाके मिलोगे ना, तो अगर वो भक्त आपको सुनेगा भी समझो, तो वो भी नाराज रहेगा आपके ऊपर। तो हो सकता है ना कि भाई तुमने काम ही इतना बुरा किया, अभी आ रहे हो, तभी तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी, ऐसे करके वो आपको ताल देगा, तो आपको क्या स्कोप है। लेकिन किसी भक्त ने आपको स्वीकार किया ना, तो वो आपके अगर सिफारिश करेगा कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण अगर उनकी सिफारिश सुनते हैं, तो कुछ आपको चांस है, नहीं तो फिर भूल जाओ। तो आप सोचते हैं देवेंद्र इंद्र जो देवताओं के सभी देवताओं के राजा हैं, वो ना जमीन पर आए और सुरभि गाय का उन्होंने शरण लिया। तभी तो पर्वत नीचे रख गया ना, सब शांति था, गाय सब घूम रही थी, तो चरणों में गिर गए गाय के। वैसे गाय तो एकदम सिंपल एनिमल है ना, गाय का क्या एकदम बड़ा पोजीशन है, इंद्र के सामने क्या है, इंद्र तो गाय का अनुरोध करती है जब इंद्र आता है तभी। तो वो सुरभि गाय के चरणों में गिरे ये और गिड़गिड़ाए, विनती किया कि कुछ मारे लिए भगवान से बताओ, माफी मांगना चाहते हैं। आप सोचिए अगर आप सुरभि गाय के जगह होते क्या करते आप, सोचो, सब लोग सोचो कि आप सुरभि गाय हो और इंद्र भी आपके चरणों में गिर रहा है, बोल रहा है कि मुझे कृष्ण के पास ले जाओ। हाँ, क्या बोलेंगे, डांटेंगे ना, अभी आ रहे हो क्या, देख सबको नष्ट करने का तुमने काम किया था, अभी तुम क्या बड़े नम्र बन के आ रहे हो, चले जाओ यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर, कोई तुम्हारी सिफारिश नहीं करेंगे, जाओ, हमको सबको सबको साथ में मारने का प्रयास करते हो और बाद में फिर पश्चाताप करते हो, सॉरी बोलने आते हो, चले जाओ यहां से। सुरभि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुरंत, मतलब भक्त कैसे होता है ना, वो अपराध होने के पहले ही माफ कर देते हैं उसको, ऐसे भक्त होते हैं, हम लोग नहीं, भक्त की बात कर रहे हैं। तो वो फिर तुरंत उसको भगवान के पास ले गई, तुरंत। शत्रु को भी शत्रुता रखते नहीं भक्त, कभी शत्रु ही हो गया ना, जो जान से मारने का प्रयास कर, तो शत्रु ही हो गया ना, अपने आप शत्रु बन गया वो न जानते हुए भी। तो इंद्र जाके वो भगवान से मिलाती है उसको, ऐसे कहते हैं तब भगवान ने पहली बार सुरभि की सिफारिश होने के बाद पहली बार इंद्र की ओर देखा कि यू एग्जिस्ट। फिर इंद्र ने बहुत सारे गीत गाए पश्चाताप वाले, हाँ भगवान ने लिखा ये बृहद भागवतामृत में कि मैं अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते रहता हूँ ब्रज में, और ये बड़े बड़े देवता इतने शक्ति वाले, बुद्धि वाले, ऐश्वर्य वाले आते हैं, बीच में व्यवधान डालते हैं, बीच में टाइम पास करते हैं मेरा पूरा, उसके बाद में फिर पश्चाताप भी करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं और प्रार्थना गाते हैं बहुत सारी लंबी लंबी, जो भागवत में अपने को पढ़ने को रहता है कितनी प्रार्थना है भाई, इसको स्किप करो, उसका अगला अध्याय पढ़ते हैं अभी, है ना, ऐसा होता है ना कभी कभी, प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं, यू आर लाइक दिस, यू आर दैट, यू आर दिस, यू आर दैट, गौरव करते रहते हैं। और भगवान ने लिखा है, कहा है भरत भागवतामृत में कि मुझे फिर सुनना पड़ता है, क्या करे बेचारा, पश्चाताप कर रहा है तो गीत भी गा रहा है, तो गीत भी सुनना पड़ता है, तब तक मेरा दिल तड़पते रहता है कि मेरे ग्वाल बाल वेट कर रहे हैं, मुझे खेलने को आना है उनके साथ में, बुला रहे हैं वो, मुझे भी खेलना है, लेकिन ये गीत गा रहा है तो सुनना ही पड़ेगा मुझे। फिर जब समाप्त करते हैं तब मैं जाता हूँ खेलने के लिए, बहुत देर हो जाती है मेरे लिए। हाँ, भगवान को ना अपने ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए, गोपियों के साथ रहने के लिए ना, उससे ऊपर कोई बड़ा काम नहीं है उनके लिए, उससे ऊपर कोई बड़ा प्रायोरिटी नहीं उनके लिए, प्राधान्य क्रम नहीं है उसके ऊपर कोई। तो ये फिर गीत गाते हैं अपना, भगवान कहते ठीक है दोबारा मत करना, इन शॉर्ट, मतलब बहुत सा लंबा श्लोक है लेकिन सारांश क्या है उसका, डोंट डू इट अगेन। तो इंद्र कहते चलो अभी माफ तो हो गया, अभी चलो अभी कुछ उनको खुश करने के लिए करते हैं। तो पूछते हैं भगवान, कुछ एक प्रपोजल है मेरा, आप अगर आप हाँ कहें तो आपको अभिषेक करने की हमारी इच्छा है। तो भगवान को ना शास्त्र में कई जगह लिखा है कि भगवान को पंचामृत अभिषेक जब होता है ना, तो बड़ा आनंद होता है भगवान को। अगर आपका पंचामृत का अभिषेक करेंगे तो कैसा लगेगा आपको, अरे चिकट चिकट सब इधर क्या हो रहा है, जल्दी गर्म पानी डालो धो दो इसको। लेकिन भगवान भगवान है, उनको बड़ा आनंद आता है, पंचामृत दूध दही हाँ घी हनी फिर पानी गरम गरम फिर जूसेस, ठीक है बोलो ठीक है एग्रीड, मतलब और टाइम पास भगवान का है कि नहीं, इतना गीत सुनाया वो सुना, अभी बोले थोड़ा रुको और अभी हमको एक विधि करना है, इतना देर बच्चों से दूर है वो, लेकिन दयालु है भगवान, भक्तों को मौका देते हैं अपना भाव व्यक्त करने का। तो इंद्र भी तुरंत एक्साइट हो जाते हैं, तुरंत अपने सब देवताओं को आदेश देते हैं कि जाओ अपने अपने देवता में लोगों में जाओ और अपना आज लोक में क्या बेस्ट चीज है। जैसे आप उधर जाएंगे ना कश्मीर में तो फिर एप्पल्स, नागपुर में जाएंगे तो ऑरेंजेस, ऐसा होता है ना, और मई महीने में कोकण में जाएंगे तो मैंगो। तो अपना क्या क्या है खाने की चीज नहीं, क्या ऐसी वस्तु है आपके धाम में वो ले आओ अपने लोक में। तो वायुदेव छत्र लेके आते, छत्र वायु का छत्र है ना, वो बहुत फेमस है, अम्ब्रेला। और वरुण का सिंहासन बहुत फेमस है, रत्न का सिंहासन। तो वरुण लेके आते हैं, वायुदेव लेके आते हैं, बाकी सब लोग अपने अपने धाम लोगों से बेस्ट चीजें लेके आते हैं भगवान के आनंद के लिए। ऐरावत के 5 सुंड होते हैं, वो जाकर आकाश गंगा से गंगा जी का जल लेके यहाँ पर ऐरावत कुंड बनाते हैं। सब प्रिपरेशन चल रहा है। अब अभी आप तो ना अभिषेक करना है तो दूध लेके आते ना बहुत सारा, यहाँ से गई गौशाला से 100 लीटर चाहिए तो सब जगह इकट्ठा करते हैं, फिर वहाँ करते हैं, फिर यहाँ पर यानी इकट्ठा करते हैं, फिर यहाँ पर वो इकट्ठे मटके लेके आते हैं। हमारा भी बहुत थोड़ा अभिषेक करते हैं लेकिन बहुत काम होता है उसके अंदर, तो पूरी तैयारी करते हैं। अप्सराएं अपना जल लेके आते हैं, अप्सरा कुंड बनाते हैं, ऐरावत कुंड बनाते हैं, सब लोग अपना अपना सब सामान लेके आते हैं। और फिर सुरभि अपना दूध और ऐरावत कुंड का गंगा जल, इससे भगवान का दिव्य अभिषेक होता है। उस सिंहासन पर बिठाकर एकदम विधिवत ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा के साथ बृहस्पति आते हैं, सभी देवता जितने भी है ना सब सपना धाम तेल दिव्य अपने लोक छोड़कर हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि देवेंद्र इंद्र का अभिषेक हो रहा है ना, वो खुद अपने हाथ में नेतृत्व में अभिषेक कर रहे हैं। साधारण काम नहीं है ना, राजा खुद का, राजा के घर का फंक्शन है तो सब लोग को आना है। सब देवता लोग ब्रज में प्रवेश करते हैं, वो भी सोच रहे हैं कि अरे ब्रज में तो किसी को आने को मिलता ही नहीं है, इस बहाने एंट्री मिल रही है, जाओ जितना भी समय मिलता है उतना लो, संग करो। रात को रहने का इंतजाम तो है नहीं, लेकिन दिन में तो जाने को मिलेगा, कम से कम दर्शन होगा भगवान का ब्रज में, क्योंकि भगवान ब्रज में अलग भाव में होते हैं ना, सब लोग ब्रज में आके अलग भाव में चले जाते हैं। और फिर बॉम्बे में जाके फिर ऑफिस में बैठते हैं अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन ब्रज में भगवान भी अपने अलग भाव में रहते हैं ना, एकदम बहुत प्रेम में रहते हैं। तो वो दर्शन कितना दुर्लभ है, सब लोग उसका मौका लेते, सब सब पूरा देवता लोक सातों लोक के खाली सब हो गया, सब लोग इधर खड़े हैं और बड़ा दिव्य अभिषेक करते हैं। भव्य, दिव्य तो नहीं कह सकते उसको, भव्य अभिषेक करते हैं। भव्य भव्य यानी ऑपुलेंट, इतना ऐश्वर्यपूर्ण अभिषेक करते हैं। सब अपने अपने किन्नर यक्ष किम पुरुष गंधर्व सब नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं अपने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स के साथ। हर चीज एकदम कलात्मक है, हर चीज सुगंध सब जगह फैल रहा है, क्योंकि सभी देवताओं के शरीर में सुगंध आ रहा है। इतना दिव्य भव्य अभिषेक करते हैं, फिर सब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं कह रहे अपने समय किधर है, अरे लोटा किधर है, अरे वो किधर था, वो सब चलो लेके जाओ, अपना कीमती वस्तु है, छोड़ दे के चले जाते हैं। सरा पैराफ्रेनिला इज ऑल देयर ओनली। जब ये सब चलते रहता है ना तो भगवान इंद्र जो है ना उसके बाद में ऐलान करते हैं कि आज से हम आपको गोविंद से पुकार नाम से पुकारेंगे। गोविंद का मतलब आप भूमि के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं और गाय के भी स्वामी हैं, ऐसे बहुत गौरव करते हैं और गोविंद के रूप में उनको घोषित कर देते हैं। और जो अभिषेक होता है ना उनका, वो एक जगह जमा हो जाता है पूरा, उसका नाम है गोविंद कुंड, जो भगवान का स्वयं स्नान का जल है, वो बहुत पवित्र जल है, बहुत पावरफुल दिव्य दृष्टि से भगवान का शरीर धोकर उसमें अभिषेक का जल इकट्ठा हुआ है। उस समय वृंदावन में खबर पहुंचती है, अरे हमारे कन्हैया को इंद्र ने अभिषेक करके गोविंद का नाम दे दिया है। तो गोपियां कहते हैं, अरे हमारी राधा रानी का भी अभिषेक होना चाहिए, उसका भी वृंदावन के राजा के रूप में इनका अभिषेक हो गया तो वृंदावन की रानी के रूप में इनका अभिषेक होना चाहिए। तो सब सखियां राधा रानी को लेकर इमली तला में आती है, वहां पर सिंहासन रख के बहुत भव्य और दिव्य अभिषेक करते हैं राधा रानी का, और उनको वृंदावनेश्वरी के नाम से घोषित कर देंगे। बोलो वृंदावनेश्वरी राधा रानी महारानी की जय। तो ये जब अभिषेक हो रहा है कृष्ण भगवान का, तो बहुत सारे ग्वाल बाल ना छुप छुप के देख रहे थे पेड़ के पीछे से, उनको बड़ा अद्भुत लग रहा था कि इतने बड़े अलग अलग तेज वाले, अलग अलग, कोई 4 मुख वाला है, कोई 5 मुख वाला है, कोई जिसके शरीर पर सब आंखें ही आंखें, कौन है वो, क्यों 2 आंखें तो सबके ऊपर होती है, सब शरीर में आंखें कैसे। उन्होंने गौतम ऋषि का अपराध किया था है ना, अहिल्या का भोग लेने का प्रयास किया था उन्होंने, तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि जिन आंखों से देखकर तुम हो गए ना, लेकिन तुम सब शरीर में तुम्हारी आंखें हो जाएगी, मतलब जहां मैं बैठा हूं ना इधर भी आंखें ही है। इधर भी आंखें, इधर भी आंखें, इधर भी आंखें, सब जगह आंखें आंखें। वो तकलीफ वाला काम है वो, आंखें ना अपनी जगह पर होना अच्छा है, कहीं एक आंख कहीं जगह यहाँ से निकल के कोर के लगा दो, फिर समझेगा आपको कितना तकलीफ होती है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या कहना है आपका? इफ द आईज आर रिमूव फ्रॉम हियर एंड पुट इट ओवर हियर, सपोज यू कैन सी स्टिल, देयर इज नो प्रॉब्लम, व्हाट विल हैपन? यू कांट वेयर क्लोथ्स बिकॉज देयर इज आई ओवर हियर ना, है ना, सो इनकन्वीनियंट। तो ये शार्प था, मतलब आपको लगेगा कि अच्छा है ना, इतने सब सब आंखों से सब दिखेगा, आगे पीछे सब दिखाई पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो कष्ट वाला काम है बहुत। तो वो ग्वाल बाल नंद बाबा को आके बता रहे हैं, अरे एक आदमी था ना, सब आंखें ही आंखें थी उसकी, और एक तो चार सर थे उसके, एक पांच सर वाले थे। कौन थे पांच सर वाले? शिवजी महाराज, जिनका आज वेडिंग एनिवर्सरी है, महाशिवरात्रि। चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, फिर बड़े बड़े देवता, तेज वाले, कोई छतरी खड़ा लेके, कोई कुछ कर रहा है, सब में इतना सुगंध आ रहा है, क्या कहें आपको। तो ग्वाल बालों के भी मन में इच्छा हुई कि हमें भी अपने कन्हैया जी का अभिषेक करना चाहिए। अभी ना आपने क्या बोला, आपको भगवान सब अभिषेक करवा के ले रहे हैं, मन किधर है उनका? ग्वाल बालों के अंदर है, कब मिलूंगा मेरे सखाओं को। तो जैसे ही ये लोग लेते ना एग्जिट लेते ना, तुरंत अपने भाग के अपने ग्वाल बालों को मिलने आते हैं। तो ग्वाल बाल कहते हैं, अरे कन्हैया हमको भी आपको अभिषेक करने का दिल है, हम भी आपका अभिषेक करना चाहते हैं। बोला हाँ करो ना, ऐसे करो ना, ऐसे इंद्र को नहीं बताया था? ठीक है कर सकते, ऑफिशियल ना, एवरीथिंग इज ऑफिशियल, नीड ऑफ एक्सप्रेसिंग लव एंड इमोशन देयर। इमोशन इज फॉर ब्रजवासी, इज नॉट फॉर देवता लोग, जिन्होंने ऑलरेडी अपराध करके इतना गड़बड़ करके बाद में बोल रहे ये करो वो करो। ठीक है, सब ऑफिशियल परमिशन दिया था, तो उसमें कोई ऐसा भावना वोश होने का कोई काम नहीं है। लेकिन भाग के जब गए और ग्वाल बाल ने कहा हमको अभिषेक करना है, तो हाँ यस, तभी आपके पास हम अपना सिंहासन बनाएंगे। एक पत्थर ऐसा रखा, एक पत्थर ऐसा रखा, ये अपना सिंहासन, बैठ जाओ इसके ऊपर। बैठ गए आराम से, तो अपने घर से दूध लाया और जोरदार अभिषेक किया। हाँ, लेकिन ऐश्वर्य कुछ नहीं उसके अंदर। ऐसे आप भी समझो, अभी वो अपने कृष्ण भगवान जो है ना, वो श्रुतदेव के घर पे गए थे और बाहुलाश के घर पे भी गए थे, एक साथ दो रूप बना के, एक साथ आमंत्रण था ना, एक ही अपॉइंटमेंट था, तो क्या करेंगे हम लोग, एक ही घर में जाएंगे। दो रूप बना के दो घर में गए, एक जगह 56 भोगों का ऐसा भंडार लगा हुआ है, भगवान को खिलाया जा रहा है, एक जगह पर तो गोंडपाट पे बिठाया उनको, रुकी सुखी रोटी खिलाई, दोनों ने भक्ति भाव से खिलाया, दोनों जगह भगवान को इक्वल आनंद आया, क्योंकि दोनों भगवान के भक्त थे, एक अमीर भक्त है एक गरीब भक्त है। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा क्या तुम शुद्धदेव घर पे बुलाते हो, गुणपाट पे बिठाते हो, क्या हम क्या है और हमारी पोजीशन क्या है, तुम क्या करते हो, कुछ मांग के लाते, बोरो करते, ये उधार लेते हैं, ऐसा कैसा खिलाते हो आप? कुछ स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना हमको बुलाने के लिए। अभी योगी जी आ रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो रास्ते बनते हैं, कुछ सफाई होती है नाले की, क्या क्या होते रहता है। मुख्यमंत्री है वो आ रहा है तो होता है। एक बार क्लिंटन आया था उधर कफ परेड में, तो पूरा एयरपोर्ट से लेके सारे रास्ते चकाचक हो गए एकदम। कितने करोड़ खर्च कर दिए 2 दिन में रास्ता बनाने के लिए। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है ना, उसका कोई स्टैंडर्ड है? अरे भगवान जो विश्व के मालिक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, कोटि जितने कोटि ब्रह्मांड है उसके मालिक तो उनके अवतार हैं महाविष्णु। महाविष्णु उनके 7th डिग्री अवतार हैं, वो तो गौलोक के भी स्वामी हैं। वो आ रहे हैं और उनको टाट पे बिठाया जा रहा है और रुकी सुखी खिलाई जा रही है, बड़े प्रेम से खा रहे हो। ये केवल भगवान कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक तरफ इतना ऐश्वर्य और एक तरफ इतनी सिंप्लिसिटी, दोनों चीजें एक साथ ना एक भगवान में हो सकती है। ऐसे प्रकार का विरोधाभास जो है ना वो केवल भगवान में हो सकता है, या तो संत में हो सकता है। संत भी किसी अमीर शिष्य के घर में जाएंगे और पंच पकवान का स्वाद लेंगे, और गरीब झोपड़ी में जाके भी उधर उसकी भी रोटी खा सकते हैं, क्योंकि वो पंच पकवान खाते हुए भी पंच पकवान नहीं खा रहे हैं, उसका भजन भक्ति जो है उसका भाव को स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ जा रहे हैं तो इसका भी भाव को ग्रहण कर रहे हैं, उसको ना सूखी रोटी से मतलब है ना लड्डू पकवान से मतलब है। उनके लिए तो जैसे दुर्वासा मुनि कैसे हैं, वो दुर्वा ही खाते हैं, तो गोपियों ने उनके तो पंच पकवान खिलाया। वापस लौट के आने लगे तो जमुना जी बहुत ज्यादा बह रही थी पानी बह के, तो दुर्वासा मुनि ने कहा, वापस दुर्वासा मुनि के पास में गए, वो महाराज अभी हम आपको भोजन खिलाने आए थे लेकिन जमुना जी तो बाढ़ आ रही है उसके अंदर, मुझे जाना है वापस। तो दुर्वासा मुनि कहते हैं, जमुना जी को बता दो कि केवल दुर्वा खाने वाले दुर्वासा मुनि कह रहे रास्ता दो, भाव क्या बोलेंगे? अभी तो पंच पकवान खिलाया उनको, बड़े मजे से खाया उन्होंने, और हमको बोल रहे हैं कि यमुना जी को बोलो कि केवल दुर्गा खाने वाले, दुर्वासा मुनि बोल रहे रास्ता दो, तभी क्या करेंगे, अभी तो वो बहस करने का समय नहीं है, अभी तो खिलाया आपको, ऐसे बोलने को समय नहीं, आपको जाना है तो जाके बोले, बोल लेते ना, देखते हैं क्या होता है। फिर आगे जाके बोलते हैं, केवल दुर्वा आहार करने वाले दुर्वासा मुनि कह रहे हैं रास्ता दो, तुरंत जमुना ने रास्ता दिया। उसके पहले जब ही जमुना जी को पार करके दुर्वासा मुनि को भोजन खिलाने के लिए जाने वाले थे, तो भी जमुना जी में बाढ़ थी, तो श्री कृष्ण मिले, तो कह रहे कैसे जाएं हम लोग, तो कहते हैं जमुना जी को बोलो ब्रह्मचारी कृष्ण आदेश दे रहा है रास्ता दो। तो सब गोपियां हंसने लगे उसको देखकर, आप और ब्रह्मचारी अरे ब्रह्मचारी तो एकदम स्त्रियों से दूर रहता, आपके एक नहीं अनंत कन्याओं के साथ में खेलते हो आप, कैसे ब्रह्मचारी। तो बोले फिर मत बोलो ना, वो इधर ही। तो फिर वो गए जमुना जी के पास, बोले ब्रह्मचारी श्री कृष्ण आपको आदेश दे रहे हैं कि रास्ता दो, तुरंत जमुना जी ने रास्ता दिया। ठीक है बाद में विचार करते हैं, पहले जाके करते हैं अपना काम। उधर किया तो उधर उनने बोला कि दुर्वा खाने वाले दुर्वासा मुनि, उधर भी रास्ता दिया। तो लौट के आए तो बस कृष्ण मिले यहाँ पर, तो कृष्ण को पूछते हैं वो, ये क्या रहस्य है, आप ब्रह्मचारी हो दुर्वा खाने वाले, इसका कुछ भेद करो। तो उन्हें कहा कि मैं आप सबके साथ में हूं, लेकिन मैं किसी से अटैच नहीं हूं, किसी से मेरा मन आसक्त नहीं है, उस लेवल पे मैं ब्रह्मचारी हूं। और फिर दुर्वा समझने का क्या, उन्होंने जो हमारे सामने खाया सब कुछ, उन्होंने तो दुर्वा के भाव से ही खाया आपको प्रसन्न करने के लिए, उन्होंने खाया होगा लड्डू पकवान, लेकिन वो दुर्वा समझ के ही खाया उन्होंने। जैसे भगवान वो भोजन का भाव ही ग्रहण करते हैं, वो मसाला डोसा और वड़ा मेदू वड़ा ग्रहण नहीं करते, वो उसका पीछे जो भाव है वो ही ग्रहण करते हैं। तो ये बात कहाँ से निकली थी, भाव से। तो ग्वाल बालों ने बहुत सिंपल अभिषेक किया, लेकिन भगवान ने फिर दोबारा बृहद भागवत में लिखा है कि जो ग्वाल बालों के अभिषेक में आनंद आया वो इंद्र के अभिषेक में आनंद नहीं आया, क्योंकि ग्वाल बालों के अंदर कोई ऑफिशियल बात नहीं है, इंद्र बालों के सबके ऑफिशियल सिचुएशन है ना, खबरें का एक पद है, पोस्ट है, अपना अपना अधिकार पावर अथॉरिटी सब है, वो अपने अपने अधिकार में ऑफिशियल सब काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑफिशियल, दे जस्ट कांट बिकम पर्सनल विद कृष्णा। अच्छा लोग गोटी खेलते हैं ऐसे कर सकते क्या, इंद्र आए ऊपर से बोले अरे कन्हैया चल ना गोटी खेल लेते हैं, क्या बहुत देर गोटी नहीं खेला, दूर खड़ा रहना है, अदब से बात करनी है, ठीक से प्रार्थना करके दंडवत करके फिर आगे का प्रस्ताव रखना है, उससे वैसा ही जवाब मिलेगा और जाना है निकल के। फिर ग्वाल बालों का ऐसा नहीं है, अरे क्या गोटी कंधे पे चढ़ जाते हैं, चल तू हार गया तो चल मुझे अभी सफर करा देना यहाँ से वहां तक, और लास्ट टाइम थोड़ा सा कम एरिया में उतर गया था, अभी लंबा करना है आपको, है ना, हार गया ना तो कंधे पे बिठा के एक राउंड देना है, और चालाके मत करना, छोटा राउंड मत देना, अच्छा राउंड देना, अब इतना तय किया गया है, ऐसे वो ग्वाल बाल बोल सकते हैं प्रेम से। तो उन्होंने अभिषेक किया ना, इतना प्रेम से अभिषेक किया, इतना प्रेम से किया, भगवान को इतना आनंद आया, भगवान तो झूम रहे थे उस अभिषेक में, बताते भी हैं बड़े प्रेम से कि मुझे ग्वाल बालों के आनंद में अभिषेक में इतना आनंद आया, कोई ऐश्वर्य नहीं था उसके अंदर, खाली प्रेम ही प्रेम था। तो रीझते कैसे है वो, ऐश्वर्य से रीझने वाले नहीं है वो, क्यों रीझते नहीं ऐश्वर्य से बताओ, एनी रीजन, इतना ऐश्वर्य के साथ में इंद्र ने अभिषेक किया, छत्र लाया, सिंहासन लाया, क्या क्या आकाश गंगा का जल लाया, कितना मेहनत किया उसने, द ऑर्गेनाइजेशन वॉज सो डिफिकल्ट, भगवान प्रभावित क्यों नहीं हुए उससे बताओ। हाँ भगवान का ऐश्वर्य बहुत ज्यादा है, उनसे तो कोई प्रभावित होने का काम नहीं है, और भाव नहीं था। हाँ प्रेम के भूखे भगवान है, भावग्राही है, और एक कारण है उसका कि सारे ऐश्वर्य उन्होंने दिए हुए हैं, उसमें आपका क्या है, आप इतना गर्व क्यों कर रहे हैं, धन भी उन्होंने दिया है, बुद्धि भी उन्होंने दिया है, ज्ञान भी उन्होंने दिया है, बल भी उन्होंने दिया है, सब कुछ उनको ही दिया हुआ है, और उनके दिए वस्तु पर उनको ही रोब जमाने का, उनको ही गर्व दिखाने का, उनको ही ऐसा हावी हो जाने का कुछ है क्या, जिस भगवान ने आपको सब कुछ दिया, जो आज आप हो वो सब उन्होंने दिया हुआ है, और वो आप अगर उनको दे रहे हैं तो उसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन जब बच्चा अपने माता जी को मदर को उसके बर्थडे पे 5 रुपए का चॉकलेट दे के हैप्पी बर्थडे बोलता है, तो मम्मी ऐसा नहीं बोलती है क्या बड़ी बात है, मैंने पॉकेट में नहीं दिया था, उससे ही तुमने सेव करके लड्डू चॉकलेट लेके आया हूँ। उसने क्या मैं बड़ी बात है, नहीं वो चॉकलेट तुम्हारे पैसे का लाया उसने, लेकिन प्रेम तो उसका खुद का है ना, जो प्रेम से लाया उस प्रेम को माँ स्वीकार करके बोले माई स्वीट बेबी, ये चुम्मा लेती उसे, थैंक यू वेरी मच। तो माता चॉकलेट नहीं खा रही है, माता प्रेम को स्वीकार कर रही है। वैसे भगवान जो है प्रेम को स्वीकार करते हैं, इसलिए भगवान के सामने कभी भी जाके बोले मेरी तरफ से सोने का दरवाजा बना दो भगवान के लिए, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान को। वैसे वो है ना अपना विजय मल्ल्या, क्या नाम वही ना, विजय मल्ल्या शराब सम्राट, मद्य सम्राट है ना, उसने वो उडुपी मंदिर में ना सोने का दरवाजा बनाया है। उसे भगवान प्रभावित होंगे क्या, लोगों को शराब पिलाकर कमा हुआ पैसा जो है वो उसका पैसा लेकर भगवान को अगर दरवाजा बनाएगा तो भगवान क्या बोलेंगे, वाह क्या दरवाजा बनाया, ऐसा बनेगा, लगाएंगे लेकिन प्रभावित नहीं होंगे। तो प्रेम से देता है शुद्ध हृदय से, पाप ना करते हुए वो भगवान को भाता है। तो ग्वाल बाल ऐसे थे, हृदय के एकदम सरल, निष्पाप, इनोसेंट, इतना प्रेम था उनको भगवान के लिए, इसलिए भगवान ने उनके अभिषेक में सबसे ज्यादा आनंद का अनुभव किया। और वो बताते हैं वो, इसलिए हमको पता है कि उनके मन में क्या है। ब्रह्मा जी के विषय में भी वैसा ही हुआ था, ब्रह्मा जी ने भी एक अपराध किया था, फिर पश्चाताप किया, फिर आए और वो खड़े हैं ऐसे पेड़ को पकड़कर, ब्रह्मा जी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, स्तुति करते जा रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कभी समाप्त करेगा या तू, जाना है खेलने के लिए, बस ना अभी कितना हो गया, ठीक है, फिर बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। ऐसे मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू रिडिक्यूल ब्रह्मा जी, बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे कृष्ण भगवान का मन किधर है, ऐसा बता रहा हूँ मैं। वो ब्रह्मा जी का भी उपहास नहीं कर रहे, वो सुन रहे, गंभीरता से सुन रहे, लेकिन उनका हृदय किधर है, वो ग्वाल बालों के अंदर है। वो ग्वाल बाल अगर कभी बोलेगे ना क्या कन्हैया चीटिंग कर रहा है, तो आज कल से तुमको खेल में नहीं लेंगे, तो उनके लिए सबसे बड़ी धमकी है लाइफ की, वो सबसे बड़ी धमकी है। आप क्या बोलेंगे, मत लो ना मैं अपना खेलूंगा, क्या है इसमें, तुम्हें अकेले खेलने के बैठो क्या, नहीं ग्वाल बालों ने बोला कि नहीं लेंगे, तो उसके लिए आप पहाड़ टूट पड़ा है, आसमान टूट पड़ा है उनके ऊपर, कुछ भी करेंगे वो। गोपियों ने बोला आपसे बात नहीं करेंगे, तो नहीं 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 क्या करूं बताओ, क्या कैसे बात करोगे, नहीं सारे तीर्थों में स्नान करके आओ, ठीक है करूंगा, लेकिन बात करोगे ना मुझसे इतना महत्व है उनके लिए गोपियों का, बात करना, खेलना और ग्वाल बालों के साथ खेलना, और कितना देखो ना डंडा दिखाया, माँ तो कांपते, पहले डंडा नीचे रखो, डंडा नीचे रखो, तो माता को भी लगता है कितना कांप रहा है बच्चा मेरा, डंडा फेंक देती हूँ पहले, इतना डर जाएगा तो कैसे होगा उसका। हाँ साक्षात मूर्तिमान भय भी भयभीत है उससे, द पर्सोनिफाइड फियर इज फियरफुल ऑफ हिम। और इतनी सी डंडी जो है ना 4 फुट की, उससे देख के कांप रहे हैं वो भगवान, आकाश की गड़गड़ाहट सुनते हैं ना बदल की, तो भाग के माँ के गोद में थे, मैया डर लग रहा है आकाश में कुछ हवा आ गया है सब प्रेम है, ये प्रेम के लिए सब कर रहे हो ना, बालक बन के गोद में खेल रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, प्रेम प्रेम चाहिए उनको, प्रेम के लिए वो अपना भगवान का पद भी छोड़ रहे हैं, नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी पर्सन टू फील देयर लव, टू एक्सपीरियंस देयर लव, ऐसे हमारे भगवान है। तो महाशिवरात्रि तो रह गई पूरी, एनीवेज एक बात तो शिव जी के बारे में बता ही दूंगा मैं आपको। इधर एक ना बरसाने में एक स्त्रोत्र सब लोग गाते हैं, कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष, तो कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम, हे राधे कब कृपा करोगी, कब आपके कृपा का कटाक्ष यानी कि साइड लॉन्ग ग्लांसेस कब हमारे पर गिरेगी, कब हमारा उद्धार होगा। ये बहुत सुंदर स्तोत्र है, इतना उसके अंदर क्या कहते हैं सुना, वांग्मयीन ऐश्वर्य है उसके अंदर, साहित्यिक काव्य का जो ऐश्वर्य है वो उसके अंदर है, बहुत सुंदर, वो हमारे शिवजी महाराज ने रचा था, शिवजी उसका रचयिता है, उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को गिफ्ट दिया था उसको, गिफ्ट हो तो ऐसा होना चाहिए है ना, तो हम लोग साड़ी देते हैं, कंगन देते हैं, अच्छी बात है बहुत, लेकिन ये गिफ्ट है तो कुछ कह सकते हैं कि ये ऐसा गिफ्ट दिया कि दुनिया भी उसको लाभ ले रही है, पार्वती ने भी लिया, दुनिया ने भी लिया। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते, ब्रजेंद्र हाँ ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ऐसा कुछ है, हाँ ब्रजेंद्र सूनु संगते ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। मतलब मुनिन्द्र वृंद्र वंदिते, कि सारे मुनि सारे वृंद मतलब सब समुदाय वंदिते जो उनको वंदन करते हैं। त्रिलोक शोक हरिणी, त्रिलोक में जितना शोक है ना वो एक ही व्यक्ति हरण कर सकती है, वो है राधा रानी। त्रिलोक में जो शोक है, शोक का मतलब क्या होता है, कुछ खोने पर जो अनुभव होता है ना उसको शोक कहते हैं। कुछ है था हमारे पास खो गया वो, ऐसा ही है। यहाँ पर कौन से प्रकार के दुख हैं भौतिक दुनिया में, दो प्रकार के दुख हैं मालूम है आपको, एक जो नहीं है हमारे पास वो चाहिए इसलिए हम रोते हैं, हाँ, और एक हमारे पास था वो खो गया इसलिए रोते हैं। एक है आकांक्षा और एक है शोक। अब भक्तों का वर्णन कैसा है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, कोई इच्छा नहीं करते हैं और कोई गया तो भी शोक नहीं करते। तो वो त्रिलोक शोक हारिणी राधा रानी का वर्णन कर रहे हैं। मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजी, इनका जो चेहरा है ना इतना सुंदर है, कमल की तरह सुंदर है, प्रसन्न रहता है हमेशा, देखने वाले को प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऐसा उनका मुख कमल है। दर्शन करने मात्र से सारे दुख नष्ट होते हैं और आनंद का अनुभव होता है। और निकुंज भू विलासिनी, निकुंज कहाँ होता है, जहाँ पर सब जगह से बंद होता है और एक ही जगह एंट्री होती है, उसको निकुंज कहते हैं। कुंज वो है जो सब जगह खुला रहता है, तो कुंज में ग्वाल बालों के साथ लीला होती है, गायों के साथ लीला होती है, और निकुंज में गोपियों के साथ लीला होती है, निकुंज बिहारी कहते हैं उसको। कुंज बिहारी भी नाम है, निकुंज बिहारी भी नाम है। तो निकुंज वैसा, भू मतलब क्या, ब्रज भूमि, वो इस ब्रज भूमि के रज पर शयन कर दिए, ब्रज भूमि उनके शयन कार्य से कृति से पावन हो गई है, वो इस साक्षात ब्रज रज में शयन करती है, वो विलास भी करती है यानी आनंद भी लेती है। निकुंज भू विलासिनी, और क्या करती है, ब्रजेंद्र सोनू संगते, ब्रजेंद्र यानी नंद महाराज, सोनू यानी पुत्र, उसके संग में रहती है। कौन है वो, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, मतलब और एक ब्रजेंद्र है यहाँ पर जो है भानु, वृष भानु महाराज, ये उसकी नंदिनी है। हे नंदी वृष भानु नंदिनी, कब आप पर मुझ पर कृपा करोगे, इस तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। और कहते हैं कि ऐसा ये इतना सुंदर श्लोकों का संग्रह जो है, जो प्रोज अर्थ के साथ भाव के साथ पाठ करता है, वो इसको करने से ही गोलोक धाम प्राप्ति होती है। इसके आखिरी श्लोक में लिखा है, उधर वो लिखा नहीं है, कदा करिष्यसि हमाम कृपा पट, कदा करिष्य प्रश्न है, कब कृपा करोगी, कदा करिष्यहि सि हमाम, मुझे मुझ पर कदा कब करोगी, कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष कृपा वाला कटाक्ष, कृपा वाली दृष्टि कब हमारे ऊपर अर्पण करोगी, ये प्रश्न है। एंड में वो प्रश्न नहीं है, तो क्या लिखा है, मंडल प्रवेशनम ऐसा लिखा है, कि वो पार हो गया, अभी अभी नहीं पूछ रहा है कब होगा, हो गई कृपा उसके ऊपर। तो ये आमनाय तंत्र में इसका उल्लेख आता है, शिवजी महाराज के द्वारा रचित राधा कृपा कटाक्ष, इतना सुंदर राधा रानी का वर्णन दिया है। अभी ये हमारे शिवजी हैं, एक तरफ अपना ड्यूटी कर रहे हैं, विनाश करने का है, उनको आग खोल के जला देने का है, और बाकी आशीर्वाद देना है, जो भी मांगने आते हैं ना, ये दो वो दो, कन्या दो, पुत्र दो, पति दो, पत्नी दो, पैसा दो, ये दो देना है उनको, दो भाई चलो भगवान ने बोला है दे दो, उनको दे रहे हैं, लेकिन उनको ऑफिशियल ड्यूटी है, वो ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करने में भी हाय भगवान की सेवा है तो आनंद है उसके अंदर, लेकिन सच्चा आनंद जो है भगवान की लीला में सहभाग करने का है, मौका देख रहे हैं। वो आपने वो पढ़ा है क्या, द रियल यू, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रियल यू, कि आप बाहर के लिए कि कंपनी के मालिक हो या कंपनी में अधिकारी हो, मैनेजर हो या बिल्डिंग के चेयरमैन हो, आपके कई सारी पदवियां हैं, आपका रियल यू होता है ना वो डिफरेंट होता है। आपका रियल यू शायद आप कवि होंगे, कविता लिखने वाले, या आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होगा, वो आप धंधे के लिए नहीं करते, पैसे के लिए, वो आपका हॉबी है, आपको अच्छा लगता है, आपको भोजन बनाने में अच्छा लगता है, आदमी होने पर भी वो घर में संडे को जरूर कुकिंग करेगा कुछ ना कुछ। दैट इज रियल यू। एक पिता के रूप में वो बहुत अपने बच्चों से प्रेम करता है, एक पुत्र के रूप में माता के ऊपर बहुत प्रेम करता है, पति के ऊपर प्रेम करता है, पड़ोसी में प्रेम करता है, फ्रेंड्स पर प्रेम करता है। कहीं ऑफिशियल नहीं कुछ, उसका कोई पगार नहीं, कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है उसका वो, लेकिन वो उसकी खुद की इच्छा है। तो वैसे शिव जी का रियल यू क्या है? हाँ, वैष्णवानाम यथा शंभु, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतम यथा। निम्नगाना मतलब नदियों में गंगा जैसे श्रेष्ठ है, देवों में सबसे अच्युत भगवान जैसे श्रेष्ठ है, वैष्णवानाम यथा शंभु वैसे ही वैष्णवों में शिव जी श्रेष्ठ है। और पुराणानाम इदम यथा, मतलब ये मतलब क्या, श्रीमद् भागवत। ऐसे भागवत में 12वें स्कंद में 13वें अध्याय में 16वें श्लोक में बोला है। माता जी आपको है क्या भागवत, निकालो अगर है तो। 12.13.16 उसमें ये लिखा है, भागवत के 12वें स्कंद में भगवान वर्णन करते हैं कि शिव जी जैसा वैष्णव कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है वो, और वो उनका स्थाई भाव है। अब ये राइट शब्द आया, स्थाई भाव, द रियल यू, और उसमें उनको रियल आनंद प्राप्त होता है। बाकी सब में 16, बाकी सब में वो तो ड्यूटी कर रहे हैं अपना, प्रलय का समय है तो प्रलय भी कर देते हैं, जो भी भगवान के लिए सब करते हैं, अप्रिय काम है ना ये नष्ट करने का सब कुछ, लेकिन कर रहे हैं भगवान के लिए। लेकिन यहाँ पर आते हैं ऋषि बनकर नंद बाबा के पास जाते हैं, यशोदा को विनती करते हैं दर्शन दो लाला का, फिर रोते हैं बैठ के, महादेव रो रहे हैं, एक ग्वाल बालिन माता अपने बच्चे का दर्शन नहीं करा रही, रो रहे हैं बैठ के। वो शाप भी दे सकते हैं उसको, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो रो रहे हैं, माता दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, मैं दूर से आया हूँ, आपका दर्शन उधर ऐसा गोलोक में होता नहीं है, बालक रूप का इधर ही होता है, मैं वहां से आया हूँ आपका दर्शन करने के लिए। फिर दर्शन देते हैं, फिर माता बोलती है अब इधर ही रह जाओ, अगली बार रोएगा ना फिर बुलाऊंगी आपको। मतलब माता ने महादेव को खिलौना बना दिया है ना। उसने ऐसा नहीं बोला, क्या माता जानती हो क्या मैं कौन हूं, कुछ होश है आपको, क्या बोल रही हो आप, समय नहीं मेरे पास, मैं बहुत दूर से आया हूं, थैंक यू वेरी मच, दर्शन दिया ना बहुत अच्छा किया आपने, मैं जा रहा हूं अभी, बार बार रहने का टाइम नहीं मेरे पास यहां पर। अरे खिलौना बन गए वो, इतने बड़े महादेव, यही उनका रियल यू है, साई भाव। भगवान के लिए वो ना मजाक भी बन सकते हैं, हंसी मजाक का विषय भी बन सकते हैं। गोपियां हंस रहे, हंसती थी उनके ऊपर, हंस गई जब वो आए भाग भाग के, मानसरोवर में स्नान किया, गोपी शरीर प्राप्त किया, भाग के आए रास मंडल के पास, सब गोपियां मुंह हाथ करके जोर जोर से हंस रही है, देखो कैसे आ गए, इतनी सुंदर गोपी और सांप लगा के आ रही है ना, उनको प्रॉब्लम नहीं उसके ऊपर कुछ। हे गोपियों, क्या समझती हो आप, गोबर में और गोमूत्र में दूध में खेलते रहती हो, आपको पता है मैं कौन हूं, महादेव हूं मैं, तुम्हारे कहने पर जाके स्नान करके गोपी बनकर आया हूं, तुम हंस रहे हो मुझे, आप क्या समझते हो, छाप दूं क्या आपको, नो प्रॉब्लम। मतलब एक जगह पर इतना बड़ा ऐश्वर्य है महादेव होने का, और एक जगह इतनी नम्रता है उनके अंदर, कोई गर्व नहीं है किस चीज पर। उनको बोला गया कि स्त्री बनो, तो आप जरा बोलेंगे थोड़ा 10 मिनट सोचता हूँ जरा क्या होगा स्त्री बनने के बाद, पार्वती क्या बोलेगी, कहीं विचार नहीं किया हमने, तुरंत बताओ कैसे बनना है स्त्री इधर प्रवेश करने के लिए, जो बताया तुरंत फॉलो करके तुरंत आ गए। फिर उनका नाम भाव देखकर ललिता विशाखा देवी इतनी प्रभावित हो गए, अपने हाथों से शिव जी गोपी जो बनी हुए हैं उसका श्रृंगार किया उन्होंने, सुंदर गोपी बनाया उनको सुझझ कर, और फिर चामर दे के अंदर ले गए उनको, भगवान का रास मंडल पे सेवा किया उन्होंने, कोई देवता नहीं आया अंदर आज तक रास मंडल के अंदर, एक ही शिवजी महाराज प्रवेश कर चुके, जस्ट इमेजिन ना। और ये उनका स्थाई भाव है, बाकी सब ड्यूटी है उनकी। ऐसे कई कहानियां हैं, यही केवल एक देवता ऐसे है शिवजी और उनकी पत्नी, इनको ही केवल ब्रज में निवास दिया भगवान ने, रेसिडेंशियल परमिट दिया है, बाकी किसी को नहीं दिया है, कोई देवता को नहीं है। एक गणेश जी है, उनको कामेवन में परमिशन दिया रहने के लिए, उसकी भी कहानी बताऊंगा कभी आपको, उसके अलावा किसी को परमिशन नहीं यहाँ पर। और वो देवी पार्वती कितने रूपों में ब्रज में आती है, एक रूप उनका है वो पूर्णमासी बनकर आ रही है, गोपियों के गुरु बनकर आ रही है, उधर सेवा कर रही है, और नंदी बंदी कितने देवियों का रूप है यहाँ पर, अलग अलग लीला है उनके हर जगह पर, भगवान का विशेष कृपा है उनके ऊपर। शंकर जी भी कितने रूप में आए, चार जगह पर रहते हैं ब्रज में, मेन एक्चुअली बहुत जगह पर रहते हैं लेकिन चार मेन स्थान है, काम्य वन में कामेश्वर, गोवर्धन में गोपेश चक्रेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर, बाकी बहुत सारे आशेश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव, चिंताहरण महादेव, पूछते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाओ, हर एक की लीला अलग अलग है। सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि भगवान के लिए महादेव होते हुए भी खिलौना बनने को तैयार है। खिलौना मतलब क्या, कभी उठाओ कभी यूज करो कभी रख दो, है ना, थोड़ी बार वो खिलौने ने ना मुझे, मेरे बच्चे को अभी रोने का बंद कर दिया, वो खिलौना आपने मेरे बच्चे को रुलाने का बंद कर दिया, ऐसा नहीं, रोने का बंद हो तो खिलौना नहीं चाहिए, फिर होया तो फिर उठाएंगे, तब तक बैठे रहो। तो मैया क्या बोलती है, आप यहीं रहो अभी, आप कहीं जाओ मत, मैं आपको लाला को भोग लगाऊंगा पहले आपको दूंगी प्रसाद, लाला का अभिषेक करूंगी पहले आपको जल दूंगी, आप रह ही रहो। वो रह गए उधर नंदीश्वर के रूप में। एक जगह आशा दिखाया उन्होंने, कैसे आशा की जाती है, कैसे निराश नहीं होते कभी भी, और कैसे पुकारते हैं, कैसे रोते हैं, उसका उदाहरण स्थापन किया, और जाके और खिलौना बन के बैठ गए हैं। इतना उच्च चरित्र है शिव जी का, उच्चतम चरित्र है, आप तुलना नहीं कर सकते, भक्त है भगवान के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनकी कृपा से आपको भक्ति प्राप्त हो सकती है। बाकी सब चीज़ें तो दुनियादारी की पूछते रहेंगे ना, देंगे आपको वो, पर आपको समझना चाहिए कि वो जो चीज़ें दे रहे हैं वो समय के साथ नष्ट होने वाली है। वो कुछ भी चीज़ आपको देंगे तो वो समय का प्रभाव से खत्म होगी, एक दिन उसका लाभ भी खत्म होगा। वो कह रहे हैं कि मांगो आप, दूंगा मैं, लेकिन आप ऐसी वस्तु मांगो जो समय के साथ नष्ट नहीं होगी, वो भी मेरे पास है, वो भी दे सकता हूँ, और वो है कृष्ण भक्ति। वो मांगेंगे तो नाचेंगे, वो आत्मदेव ब्राह्मण ने ऐसा मांगा था तो वो बेभान होकर नृत्य करने लगे कि इतने सारे लाइन लगती है मेरे पास हजारों लाखों लोगों की, कोई ये नहीं पूछता है कि मेरे कल्याण के हित में क्या है, वो दो मुझे आप, आपको प्रिय क्या है वो दो मुझे आप, नहीं, मुझे क्या प्रिय लगता है वही मांगते रहते हैं बार 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 बार, है ना। कोई शिव शिव जी को प्रेम नहीं करता है, उनके पास से जो मिल रहा है ना उस पर ही प्रेम है उनका, खुद पर प्रेम है, जो उनके पास मिलने वाला है उसका प्रेम है, बाकी कुछ सब केला वेला नारियल जो होता है ना, दूध और बेर और गन्ने का जूस, सब बाहर का स्वार्थ होता है, सब प्रेम से कोई पेश नहीं आता है, लेकिन ब्रजवासी लोग उन पर बहुत प्रेम करते हैं, भोले बाबा के पास बहुत प्रेम करते हैं ब्रजवासी लोग, ऐसे गन्ने का जूस और दूध और पानी ऐसा स्वार्थ नहीं करते हैं कि भाई अच्छी लड़की दो अच्छा पति दो, ऐसा कुछ नहीं, उनका भोले बाबा पर प्रेम है क्योंकि भगवान के भक्त है वो, हाँ उनके जैसे ही भगवान के भक्त है, तो बड़ा चाहते हैं उनको, सब जाते हैं, कई लोग लई बाजार के कितने ऐसे ब्रजवासी हैं बिना गोपेश्वर का दर्शन किए बिना काम नहीं शुरू करते हैं, उनके जीवन का अविभाज्य अंग है वो स्वयं कृष्ण के भक्त हैं लेकिन भोले बाबा को देखे बिना काम नहीं शुरू करते। ये बात देखते नहीं कि महादेव है देवता है, नहीं, ये तो अपने ब्रजवासी आ रहे हैं, अपने ब्रजवासी लोगों से अगर आप लोग अपनापन अगर आपको प्राप्त हो सकता है ना तो आप बड़े भाग्यवान हो। अगर ब्रजवासी आपको अपना मानते हैं ना, अपने में से मानते हैं, अपना मानते हैं, तो उससे बड़ी कृपा नहीं कोई। जो भगवान जिनको अपना मानते हैं, भगवान अब उनको परिवार के सदस्य मानते हैं, और वो अगर आपको अपना मानते हैं तो साक्षात आप भगवान के परिवार में प्रवेश कर रहे हो। तो ब्रजवासियों का आपको एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है, अगर ब्रजवासी आपको चाहते हैं तो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सेवा करने का मौका मिला है उनका, वो भी आपको अपना समझे ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं, और शिवजी महाराज आप सब पर कृपा करें और आपको आपकी चेतना मति शुद्ध करके भगवान के योग्य बनाएं, और भगवान उस चित्त चेतना को देखकर अपना बनाए आपको, यही मेरी उनके चरणों में प्रार्थना है। गुरु शंकर भगवान की, पार्वती देवी की, श्री कृष्ण भगवान की, श्रीमती राधा रानी की जय।